वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों, हम इससे पहले कि आगे बढ़ें और आज के अध्ययन को आरंभ करें, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की निकटता में आए और आज के अध्ययन के लिए उससे सहायता मांगे। परमेश्वर, हमारी विनती है कि आज के वचन के द्वारा आप हम सबको बहुत ऐसे आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, हम देख रहे थे कि इसराइल के वंशज प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने की तैयारी में थे और मूसा उन्हें अपना अंतिम संदेश दे रहा था। मूसा चाहता था कि वे अपने पितरों की भूल न दोहराएं और परमेश्वर पर विश्वास करके उनकी आज्ञाओं का पालन करें, जिससे कि वे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर सकें। मूसा उन्हें पहली पीढ़ी का इतिहास सुना रहा है। तो आइए हम आज व्यवस्था विवरण की पुस्तक एक अध्याय उसके 34 से 38 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारी वे बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई कि निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्यों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। यपुन्ने का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा और जिस भूमि पर उसके पांव पड़े हैं उसे मैं उसको और उसके वंश को भी दे दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिया है और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहा कि तू भी वहां जाने ना पाएगा। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वहां जाने पाएगा, सो तू उसको हियाब दे, क्योंकि उस देश को इसराइलियों के अधिकार में वही कर देगा। मेरे मित्रों, अब ध्यान दीजिए कि कालेब और यहोशू अन्य से अलग थे, वे भी भेदियों में से ही थे, परंतु उनका विश्वास परमेश्वर में था। उन्होंने लौटकर अच्छा समाचार सुनाया था और सत्य तो यह है कि उसे आगे चलकर मनपसंद भूभाग अर्थात भूमि मिला। यहोशू की पुस्तक में उसके बारे में जो लिखा है उससे प्रकट होता है कि वह एक असाधारण व्यक्ति था। उसने भूमि का निरीक्षण किया और उस पर्वत को अपने लिए मांगा जहां भीमकाय मनुष्य रहते थे और परमेश्वर ने उसे वह भूमि उत्तराधिकार में दे दी। मेरे मित्रों, आपको परमेश्वर से क्या चाहिए? क्या आप माता पिता हैं? क्या आप जीवन में प्रवेश कर रहे युवा हैं? आप परमेश्वर से क्या मांगेंगे? मेरे ध्यान से सुने, यदि आप यह सोचे कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें और आपको मन चाही वस्तु मिल जाए तो आप भूल कर रहे हैं। ऐसे अनेक विश्वासी हैं जो यह सोचते हैं कि कुछ पाने के लिए बस बैठकर प्रार्थना ही करते रहें। मैं निश्चय ही प्रार्थना में और प्रभु की संगति में रहने में विश्वास करता हूँ, परंतु मेरे मित्रों, कुछ पाने के लिए आपको जाकर उसे प्राप्त करना है। क्या आप यह जानते हैं कि परमेश्वर ने कालेब से कहा था कि जिस भूमि पर वह कदम रखेगा उसे वह स्थान परमेश्वर दे देगा? आज हमें आशीषें मिलती नहीं है, क्यों? क्योंकि हम बैठे रहने में बहुत अधिक समय गंवा रहे हैं। यदि हमें परमेश्वर से आशीषें चाहिए तो हमें चलना होगा। धर्मशास्त्र में मसीही चाल के विषय बहुत कुछ कहा गया है, परंतु विश्वासियों के लिए निष्क्रिय बैठने के विषय बहुत कम लिखा है। हमें परमेश्वर की आशीषों को पकड़ना है। यहोशू को आगे चलकर मूसा का कार्यभार संभालना था। उसको क्यों चुना गया? वह परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी भक्ति से मानता था और उसे अनुभव भी था। यहोशू और कालेब ने जो समाचार दिया वह उत्साह से पूर्ण था, क्योंकि वे परमेश्वर में विश्वास करते थे और विश्वास में आगे बढ़ जाना चाहते थे। मेरे मित्रों, आप बैठकर और बड़ी बड़ी आशीषों की आशा करके परमेश्वर पर विश्वास प्रकट नहीं कर सकते हैं। आपको परमेश्वर के लिए विश्वास में कदम बढ़ाने ही होंगे और यह अति आवश्यक भी है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक एक अध्याय उसके 39 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो कि ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो लड़के वाले अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते, वे वहां प्रवेश करेंगे, और उनको मैं वह देश दूंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम अनदेखा करना नहीं चाहेंगे। पहली बात, दायित्व वहन की आयु हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक होती है। आज प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वालों में से अनेक उस समय कादेश बरने में अपनी किशोर अवस्था में ही थे। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय उसके 29 में परमेश्वर ने कहा था कि 20 वर्ष और 20 वर्ष से अधिक आयु के इसराइली वहां प्रवेश नहीं करेंगे, वे सब जंगल में ही समाप्त हो गए, अर्थात मर गए थे। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि अबोध बच्चे मरणोपरांत उद्धार की अवस्था में होते हैं। यह मैं कैसे जानता हूँ? परमेश्वर ने उन युवाओं को अवज्ञा का दोषी नहीं ठहराया जब इसराइल ने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से इनकार किया था। परमेश्वर ने उन्हें उस देश में प्रवेश करवाया। आपको ध्यान होगा कि पिछली पीढ़ी ने बच्चों की असुरक्षा के कारण प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से इनकार किया था, परंतु परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि उनका मुख्य कारण यह नहीं था, वे परमेश्वर का अपमान कर रहे थे, कि परमेश्वर उनकी संतान की चिंता नहीं करता है। परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तुम्हारी संतान की चिंता करता हूँ जिनके लिए तुम्हें उस देश में विनाश दिखाई दे रहा है, वही अब उस देश में प्रवेश करेंगे। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश की प्रतीक्षा करते सीमा पर खड़े ये इसराइली वही पीढ़ी हैं, और मूसा उन्हीं को संबोधित कर रहा है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 अध्याय उसके 40 और 41 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु तुम लोग घूमकर कूच करो और लाल समुन्दर के मार्ग से जंगल की ओर जाओ। तब तुमने मुझसे कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। यहाँ फिर से ध्यान दीजिए कि इसराइल ने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से इनकार तो कर दिया, परंतु उनके सामने महान और भयानक जंगल का आतंक था। उन्हें अपने पाप का बोध हुआ और उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि यदि वे लौटते हैं तो उनके सामने भयानक जंगल था, जैसा मूसा ने कहा था। अतः उन्होंने प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने का निर्णय लिया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 अध्याय उसके 42 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ऐसा युद्ध अच्छा नहीं होता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। उनका वह युद्ध परमेश्वर पर विश्वास के कारण नहीं, भय के कारण था। उनकी प्रेरणा का स्रोत परमेश्वर में विश्वास की अपेक्षा जंगल का भय था। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 1 अध्याय के 43 पद में, यह बात मैंने तुमसे कह दी परंतु तुमने न मानी, किंतु ठिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। ध्यान दीजिए, यह विश्वास का कदम नहीं था। यदि वे पहले ही परमेश्वर में विश्वास करके युद्ध पर निकल जाते तो एक और बात होती। उनका यह कार्य काल्पनिक था और सर्वथा भिन्न था। मेरे विचार में विश्वास और कल्पना में बहुत कम अंतर है। अपनी सेवा काल में मैंने अनेक जनों को परामर्श दिया है और एक व्यक्ति ने मुझे बताया, भाई मैंने तो परमेश्वर में विश्वास करके व्यापार आरंभ किया था कि वह मुझे आशीष देगा, परंतु उसने मुझे आशीष नहीं दी, इसके विपरीत मैं दिवालिया हो गया। मेरे मित्रों, यह विश्वास था या कल्पना? मुझे बाद में पता चला कि इस व्यक्ति ने किसी व्यापारी को पार्टी में कहते सुना था कि उसने अपना सिद्धांत स्थापित किया था, परमेश्वर मेरा साझेदार है, और वह व्यापार में सफल हुआ। उसने बताया कि उसने किस प्रकार परमेश्वर को अपना साझेदार बनाया और परमेश्वर ने उसे आशीषें दी और समृद्धि प्रदान की। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति की अगुवाई भी की। अतः मेरा यह मित्र घर गया और कल्पना करके कहा, यदि परमेश्वर मुझे समृद्ध बनाएगा तो मैं उसे अपना साझेदार बनाऊंगा। परंतु परमेश्वर ने उसकी अगुवाई नहीं की। अतः मेरे मित्रों, मेरी बात पर विश्वास करना कि विश्वास और कल्पना में बहुत कम अंतर है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 अध्याय उसके 44 से 46 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मधुमक्खियों की नाई तुम्हारा पीछा किया और सेर देश के होर्मा तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी न तुम्हारी बातों पर कान लगाया और तुम कादेश में बहुत दिनों तक पड़े रहे, यहां तक कि एक युग हो गया। देखिए, वे परमेश्वर के सामने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। उन्होंने रो रोकर पश्चाताप भी किया, परंतु यह कैसा पश्चाताप था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय उसके 10 पद में सुनिए कि पौलुस क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता है, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। क्या वे परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण रो रहे थे? जी नहीं, उनके रोने का कारण था एमोरियों द्वारा उनकी पराजय। आपने देखा होगा कि जब चोर पकड़ा जाता है तब वह रोता है और पश्चाताप करता है। वह कैसा रोना है और कैसा पश्चाताप है? क्या वह इसलिए रोता है कि वह एक चोर है? जी नहीं, उसके रोने का कारण है कि वह पकड़ा गया है। इन दोनों पश्चाताप में आसमान और जमीन का अंतर है। इन इसराइलियों के साथ भी ऐसा ही था। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कादेश भरने में बहुत समय लग गया। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 2 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और इस अध्याय का विषय है जंगल में भटकना। मूसा का यह संदेश उनकी जंगल यात्रा का ही वर्णन है और कादेश बढ़ने से वे जंगल में सेर पर्वत के निकट पहुंचे हैं। मैं सदैव सोचता हूँ कि परमेश्वर विनोदी स्वभाव का है और मेरे विचार में यहाँ हम देख सकते हैं। आइए हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 2 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। देखिए, उन्हें नहीं मालूम कि कहाँ जाएं। वे केवल सेर पर्वत पर चढ़कर समय काट रहे थे। अंत में परमेश्वर ने कहा कि वह अब आ गया है, अतः वे आगे बढ़ें। आज अनेक विश्वासी यही कर रहे हैं क्योंकि वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। वे समय बिता रहे हैं और निरर्थक चक्कर काट रहे हैं। परमेश्वर इसराइल की देखभाल करता है और उन्हें सही मार्ग देता है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 2 अध्याय उसके 4 और 5 पद में पढ़ते हैं, और तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेर के निवासी अपने भाई एसावियों के सिवाने के पास होकर जाने पर हो और वे तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो, उन्हें न छेड़ना, क्योंकि उनके देश में से मैं तुम्हें पांव धरने का ठौर तक न दूंगा, इस कारण कि मैंने सेर पर्वत एसावियों के अधिकार में कर दिया है। यहाँ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात है। उत्पत्ति की पुस्तक 36 अध्याय में हमने देखा था कि एसाव सेर में रह रहा था। एसाव वंशी एदोम कहलाते थे। याकूब ने पहलौठे का अधिकार ले लिया था और परमेश्वर ने उसे और उसके वंशजों को प्रतिज्ञा का देश दिया। एसाव सेर पर्वत पर चला गया था और परमेश्वर ने एसाव के कुटुंब को वह स्थान दे दिया था और यही वह स्थान है जहां चट्टानी नगर पेत्रा है। परमेश्वर ने इसराइल पर स्पष्ट कर दिया था कि वे एसाव की धरोहर को न छुएं। यहाँ सब राष्ट्रों के लिए एक शिक्षा है। परमेश्वर ने सब राष्ट्रों की सीमाएं निर्धारित की हैं, जिसे हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 26 पद में पढ़ते हैं। अधिकांश युद्धों का कारण यही है कि राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की सीमाओं का आदर नहीं करते हैं। यहाँ एक और शिक्षा निहित है, परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। एसाव से भी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा निभाई। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 2 अध्याय उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। मित्रों, यह उनके 40 वर्ष जंगल प्रवास का सर्वेक्षण है। परमेश्वर उनकी परेशानियों और दुखों को जानता था क्योंकि वह भी उनके साथ था। मूसा ईमानदारी से कह सकता था, तुमको कुछ घटी नहीं हुई, कैसी अद्भुत बात है। दाऊद ने अपने अतीत के दिनों पर ध्यान दिया तो उसने भजन 23 लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह ऐसा कैसे कह पाया, क्योंकि उसे कभी किसी बात की कमी या घटी नहीं हुई थी। परमेश्वर हमें जीवन विलासिता नहीं देता है, परंतु परमेश्वर आवश्यकता की हर एक वस्तु हमें और आपको देता है। वह आपके और मेरे लिए भी ऐसा ही करेगा जैसा उसने अपने लोगों के लिए किया। परमेश्वर अन्य जातियों की देखभाल करता है। हमने देखा कि परमेश्वर किस प्रकार एसाव की सीमाओं को सुरक्षित रखता है। वह आज भी देश देश की सीमाओं की रक्षा करता है। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 2 अध्याय उसके 9 पद और 19 पद को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को न सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न कर दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के अधिकार में किया है। 19 पद, और जब तू अमोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुंचे, तब तू उनको न सताना और न छेड़ना, क्योंकि मैं अमोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में न करूंगा, क्योंकि मैंने उसे लूसियों के अधिकार में कर दिया है। मित्रों, ध्यान दीजिए कि इसराइल उस देश में दानवों का सामना करेगा, इसलिए परमेश्वर उन्हें एसाव वंशियों द्वारा होरियों के विनाश का इतिहास सुनाता है, जिसे हम पद 22 से और पद 20 में पढ़ते हैं। वह अमोनियों द्वारा जमजुमियों के विनाश का इतिहास सुनाता है। आज भी दानव उत्पन्न होते हैं और यदा कदा 7 से 8 फुट के मनुष्य उत्पन्न होते हैं, और यर्दन नदी पार की विजय को हम देखते हैं जहां पर ये उस पर हावी हुए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 2 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, हम पढ़ते हैं, अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुन, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तेरे हाथ में कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में ले लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। इसराइल मोआब और अमोनियों के देश में से होकर आगे बढ़ा, परंतु उनकी भूमि पर अधिकार नहीं किया, उन्होंने इसराइल को भोजन पानी बेचा। मूसा हेशबोन के राज्य सीहोन के साथ समझौते की बात की याद करता है। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 26 से 29 पद में लिखा हुआ है, और मैंने कदेमोत नाम जंगल से हेशबोन के राजा सीहोन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे कि मुझे अपने देश में से होकर जाने दे, मैं राजपथ पर चला जाऊंगा और दाहिने और बाएं हाथ न मुड़ूंगा। तू रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझको देना कि मैं पीऊं। केवल मुझे पांव पांव चले जाने दे, जैसा सेर के निवासी एसाववंशियों ने और आर के निवासी मोआबियों ने मुझसे किया, वैसा ही तू भी मुझसे कर। इस रीति मैं यर्दन पार होकर उस देश में पहुंचूंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। इसराइल को शांतिपूर्वक वहां से निकल जाने की अनुमति देने की अपेक्षा सीहोन सेना लेकर आया। तब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 2 अध्याय उसके 30 से 32 पद में, परंतु हेशबोन के राजा सीहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने न दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित कठोर और उसका मन हठीला कर दिया था, इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसा कि आज प्रकट है। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सीहोन को तेरे वश में कर देने पर हूँ, उस देश को अपने अधिकार में ले लेना आरंभ कर। तब सीहोन अपनी सारी सेना समेत निकल आया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहस तक चढ़ आया। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को विनाश से बचाया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 2 अध्याय उसके 33 पद में आगे लिखा है, और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरा दिया और हमने उसको पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। यह देश जो परमेश्वर ने इसराइल को युद्ध में दिया, वह पूर्व में मोआबियों का था। एमोरी राजा सीहोन ने यह क्षेत्र मोआबियों से ले लिया था। मोआबियों को विस्थापित करने में परमेश्वर ने सीहोन का पक्ष लिया था, परंतु इसराइल के विरुद्ध सेना खड़ी करने के परिणाम स्वरूप वह मारा गया और उसकी सेना तितर बितर हो गई। उसकी राजधानी इसराइल को दे दी गई और यह घटना सदैव इसराइल के लिए स्मृति और प्रोत्साहन का कारण थी कि परमेश्वर उनके पक्ष में काम करता है। परमेश्वर उन पर प्रकट कर रहा था कि वह उनके साथ है और वह अपनी प्रतिज्ञा निभाता है। मेरे मित्रों, आज भी परमेश्वर हम में से अनेकों के साथ ऐसा ही करता है। वह हमें किसी कठिन वरन दुखदायी अनुभव से गुजरने देता है कि हमें जीवन के लिए तैयार करे या किसी की सहायता के लिए संपन्न करे। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 3 में आगे बढ़ते हैं और अध्याय 3 का विषय है बाशान के राजा ओग की पराजय। जंगल में इसराइल के अगुओं की पुनरालोकन करते हुए मूसा एक और एमोरी राजा के अवरोध और परमेश्वर द्वारा उस पर विजय का स्मरण दिलाता है। अब हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में आगे पढ़ते हैं। तब हम मुड़कर बाशान के मार्ग से चढ़ चले और बाशान का ओग नाम राजा अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया कि एद्रेई में युद्ध करे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में किए देता हूँ। और जैसा तूने हिशबोन के निवासी एमोरियों के राजा सीहोन से किया है, वैसा ही उससे भी करना। मित्रों, यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर उनका भय अर्थात डर का निवारण किस प्रकार से कर रहा है। तब हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, सो इस प्रकार हमारे परमेश्वर यहोवा ने सारी सेना समेत बाशान के राजा ओग को भी हमारे हाथ में कर दिया और हम उसको यहां तक मारते रहे कि उनमें से कोई भी न बच पाया। ओग एमोरी राजा था जिसका राज्य अजेय था। हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, उसी समय हमने उनके सारे नगरों को ले लिया, कोई ऐसा नगर न रह गया जिसे हमने उनसे न लिया हो। इस रीति अर्गोब का सारा देश जो बाशान में ओग के राज्य में था और उसमें 60 नगर थे, वह हमारे वश में आ गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि ओग 60 समुदायों पर राज्य करता था। हम व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, ये सब नगर गढ़ वाले थे और उनके ऊंची ऊंची शहरपनाह और फाटक और बेड़े थे और इनको छोड़ बिना शहरपनाह के भी बहुत से नगर थे। इस महान दृढ़ गढ़ वाले नगर को जीतना एक प्रमाण था कि परमेश्वर इसराइल की ओर से युद्ध करता था। यह उनके लिए एक महान प्रोत्साहन था क्योंकि उन्हें वहां दानवों और गगनचुंबी शहरपनाहों वाले नगरों का सामना करना पड़ता था। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप ओग के व्यक्तित्व पर ध्यान दें। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 अध्याय उसके 11 पद में लिखा हुआ है, जो रपाई रह गए थे उनमें से केवल बाशान का राजा ओग रह गया था। उसकी चारपाई जो लोहे की है वह तो अमोनियों के रब्बा नगर में पड़ी है। साधारण पुरुष के हाथ के हिसाब से उसकी लंबाई 9 हाथ की और चौड़ाई 4 हाथ की है। एक हाथ 18 का होता है और उसका पलंग 13.5 फुट लंबा था। इसे किंग साइज बेड कहते हैं। अंततः उस पलंग को अमोनियों के रब्बा नगर में संजो कर रख दिया गया। आगे देखते हैं कि देश पर अधिकार। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, जो देश हमने उस समय अपने अधिकार में ले लिया है वह यह है, अर्थात अर्नोन के नाले के किनारे वाले अरोयर नगर से ले सब नगरों समेत गिलाद के पहाड़ी देश का आधा भाग, जिसे मैंने रूबेनियों और गादियों को दे दिया, और गिलाद का बचा हुआ भाग और सारा बाशान अर्थात अर्गोब का सारा देश जो ओग के राज्य में था, इन्हें मैंने मनशे के आधे गोत्र को दे दिया। सारा बाशान तो रपाइयों का देश कहलाता है। मित्रों, ओग का राज्य रूबेन, गाद और मनशे के आधे गोत्र को दे दिया गया क्योंकि इन्होंने यर्दन के पूर्व में बस जाने का निर्णय लिया था। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 अध्याय उसके 18 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और उस समय मैंने तुम्हें यह आज्ञा दी कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें यह देश दिया है कि उसे अपने अधिकार में रखो। तुम सब योद्धा हथियार बंद होकर अपने भाई इसराइलियों के आगे आगे पार चलो। यहाँ पर फिर देखते हैं कि मूसा उन्हें चिता रहा है कि नए स्थान में बस जाने का अर्थ यह नहीं है कि वे यर्दन पार अन्य जातियों के साथ विजय अभियान में साथ न दें। वे इस दायित्व में से मुक्त नहीं थे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 अध्याय उसके 19 और 20 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारी स्त्रियां और बाल बच्चे और पशु जिन्हें मैं जानता हूं कि बहुत से हैं, वह सब तुम्हारे नगरों में जो मैंने तुम्हें दिए हैं रह जाएं, और जब यहोवा तुम्हारे भाइयों को वैसा विश्राम दे जैसा कि उसने तुमको दिया है, और वे उस देश के अधिकारी हो जाएं जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन्हें यर्दन पार देता है, तब तुम भी अपने अपने अधिकार की भूमि पर जो मैंने तुम्हें दी है लौटोगे। मूसा की प्रार्थना। मूसा परमेश्वर के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव और प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश न करने का कारण प्रकट करता है। हम व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसके 23 से 26 पद में पढ़ते हैं, उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की कि हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसलिए मुझे पार जाने दे कि यर्दन पार करके उस उत्तम देश को अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। मेरे मित्रों, एक अच्छे पिता की नाई परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। उसने कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें न करना। तब हम व्यवस्था विवरण 3 अध्याय उसके 27 में पढ़ते हैं, पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यर्दन के पार जाने न पाएगा। मेरे मित्रों, मूसा को परमेश्वर से गिड़गिड़ाता हुआ देखकर हमारा दिल रोता है, क्योंकि उसने 40 वर्षों से यह स्वप्न देखा और संजो कर रखा था कि हमारे लिए यह एक अति उत्तम शिक्षा है। मित्रों, यद्यपि हम अपने पापों का पश्चाताप तो करते हैं, परंतु हमें परिणाम भोगने होते हैं, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढाड़स देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा और जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग करा देगा। मेरे मित्रों, मूसा प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने वाली इस पीढ़ी पर स्पष्ट कर रहा है कि परमेश्वर ने यहोशू को उनका अगुआ नियुक्त किया है कि यर्दन पार उनकी अगुवाई करे। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और यह अध्याय भी समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही परमेश्वर के उन अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त किया है। कृपया इस पर विश्वास करें और बने रहें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
जगत।